है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले मन का दीप जला, बंदी जला, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले। सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले।
प्रिय मित्र, प्रविष्य के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठ करके एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। आज जब हम अध्ययन करते हैं तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन में से सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए। आज हम सबों को वचन के द्वारा आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि आपसे मैंने कहा है कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे नगर के फाटक। यह हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 12 से 13 पद को पढ़ने से मिलता है। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। मेरे प्रियो, उस नगर के 12 फाटक हैं, हर एक दिशा में 3 फाटक। प्रत्येक फाटक पर इसराइल के एक गोत्र का नाम लिखा था। यह ध्यान आकर्षक करने वाली बात है और तुरंत ही ध्यान इस ओर ले जाता है, जब इसराइल जंगल में छावनी डालता था तब एक निश्चित क्रम में विलाप वाले तंबू के चारों ओर तंबू गाड़ता था। लेवी वंश याचकों का था और मिलाप वाले तंबू में सेवा करता था। नया यरूशलेम भी एक प्रकार का मिलाप वाला तंबू है, क्योंकि परमेश्वर वहां मनुष्य के मध्य वास करेगा। दुल्हन भी याचकों का समाज है जो निरंतर उसकी उपासना करती रहेगी। वे उस नगर में परमेश्वर की सेवा करेंगे और वैसे ही रहेंगे जैसे लेवी वंश मिलाप वाले तंबू के चारों ओर छावनी डाले हुए रहता था। मेरे प्रियो, अनंत काल के युग में सब कुछ इसी नगर की ओर उन्मुख होगा, क्योंकि परमेश्वर वहां वास करता है। पृथ्वी पर उपस्थित इसराइल इस नगर के साथ वैसे ही संबंधों का आनंद लेंगे जैसा जंगल प्रवास के समय मिलाप वाले तंबू और प्रतिज्ञा के देश में मंदिर का आनंद लेते थे। इसराइल के लिए यह नगर मिलाप वाला तंबू स्वरूप होगा। इसराइल उस समूह का भाग होगा जो अनंत काल में आराधना के लिए इस नगर में आएंगे। वे पृथ्वी से अपनी आराधना और महिमान्वन लाकर चढ़ाएंगे। वे इस नगर में वैसे ही रहेंगे जैसे पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू के साथ रहते थे। जो वहां वास करेंगे वे याजक होंगे, अर्थात मसीह की दुल्हन होंगे। अनंतकालीन युग में दुल्हन परमेश्वर के अधिक निकट होगी और जैसे अटारी में भोज के समय यूहन्ना प्रभु यीशु के सीने पर सिर रखे हुए था, वैसे ही दुल्हन भी प्रभु के सीने पर सिर रखेगी। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 8 अध्याय के 5 में लिखा है, यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए जंगल से चली आती है। वह दुल्हन है और जंगल से चली आती है, अर्थात इस वर्तमान संसार से। इसराइल के 12 गोत्र इस नगर में आराधना के लिए आएंगे। प्रत्येक दिशा से 3 गोत्र आराधना करके वे पृथ्वी पर लौट जाएंगे, परंतु दुल्हन नए यरूशलेम में ही रहेगी। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे उस नगर की नींव को। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 14 पद में लिखा है, नगर की शहरपनाह की 12 नींव थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। ध्यान दीजिए, इस नगर की 12 नींव हैं और प्रत्येक नींव पर एक प्रेरित का नाम लिखा है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि कलीसिया प्रेरितों की नींव पर खड़ी है और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। स्वर्गरोहण के समय प्रभु यीशु ने कुंजियां प्रेरितों को सौंप दी थी। सांसारिक रूप से कलिसिया इन 12 पुरुषों को देख रेख में थी। प्रेरितों के काम की पुस्तक इसका क्रम प्रकट करती है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर न उठाया गया। मेरा अपना विचार है कि यहूदा इस्करियोती के स्थान पर मत्तियाह की अपेक्षा पौलुस 12वां शिष्य था। पत्रस ने 12वां शिष्य चुनने के लिए सभा का आयोजन किया था, परंतु उस समय पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। मेरे विचार में पत्रस द्वारा मत्तियाह का चुनाव करना परमेश्वर की इच्छा में नहीं था, क्योंकि हम उसका नाम फिर कभी नहीं सुनते हैं, परंतु पौलुस का नाम बहुत अधिक सुना जाता है और मेरे विचार में पौलुस को ही परमेश्वर ने 12वां शिष्य नियुक्त किया था। इन 12 शिष्यों को कलीसिया के सब पवित्र लेख सौंपे गए थे। इन्हीं शिष्यों ने पहले उपदेश दिए और पहली पहली कलीसियाएं स्थापित की और वे ही प्रथम शहीदों में थे। इन 12 शिष्यों के महत्व को कोई घटाए तो वह धर्मशास्त्र का सम्मान करना नहीं होगा। वे वास्तव में ही कलीसिया की नींव थे। कलीसिया सदा सर्वदा उनकी आभारी होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु यीशु का मान कम हो गया। वह तो कोने का मुख्य पत्थर है और कलीसिया की नींव प्रेरित हैं। तब हम आगे देखेंगे उस नगर का आकार एवं विस्तार। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 15 और 16 पद में लिखा है, जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसके शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। नगर के आकार को समझना कठिन है क्योंकि इस समय के जगत से अनंत काल की नई सृष्टि की व्याख्या करने में हम सक्षम नहीं हैं। इस नगर के नाप के कारण इसके आकार और विस्तार के संबंध में अनेक कल्पनाएं की गई हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का नाप 750 कोस था, अर्थात 2250 किलोमीटर। पहली बार में तो नगर की लंबाई चौड़ाई विस्मित कर देती है, परंतु यह नगर के महत्व के समतुल्य है। निश्चय ही सृजनहार परमेश्वर को घटी का दोष नहीं दिया जा सकता है। समुद्री तट पर जाकर आप देखेंगे कि परमेश्वर ने तट पर बहुत अधिक बालू और समुद्र में बहुत अधिक पानी रखा है। उसने अनेक पर्वत बनाए हैं और सब जगह चट्टाने भी रखी हैं। वह मुक्त हस्त है, अर्थात उदारता से काम करता है। उसने आकाश को सितारों से सजाया है। वह हर एक काम को बहुतायत से करता है। इस नगर पर सृजनहार की मुहर लगी है। इस नगर का निर्माता प्रभु यीशु नासरत है। अब मेरे साथ नगर के आकार पर ध्यान दीजिए। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था। यह धर्मशास्त्र की सरल व्याख्या है। इसका अर्थ है कि यह नगर धनाकार है, 22,500 किलोमीटर प्रत्येक भुजा। डॉक्टर सीस के अनुसार यह नगर घनाकार है, जबकि डॉक्टर हेरी आयरनसाइड इसे पिरामिड कहते हैं तथा अन्य विचारक अलग अलग तरीके से इसे बताते हैं। अतः हमारे लिए अंतरिक्ष में एक धन या एक पिरामिड की कल्पना करना कठिन है, क्योंकि हमने अंतरिक्ष में जो कुछ भी देखा है वह सब गोल ही है। ऐसा आकार पृथ्वी पर तो रचना संभव है, परंतु अंतरिक्ष में यह हमारे लिए असंभव प्रतीत होता है। परंतु बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि यह नगर घनाकार है। यदि हम किसी धन को एक पारदर्शी गोले में देखें तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से जब पूछताछ की जाती है कि ऐसे घनाकार को एक गोले में रखा जाए तो उसका परिमाप कितना होगा, उन्होंने बताया कि वह गोला 12,246 किलोमीटर का होगा। हमारे चांद की गोलाई 3,240 किलोमीटर की है, अतः नया यरूशलेम चांद से बड़ा होगा और अन्य किसी भी अंतरिक्षीय पिंड के समान गोल ही होगा। मेरे विचार में हमें यही चित्रण दिया गया है। मेरे प्रियो, जहां तक मैं समझता हूं, हम इस गोले में रहेंगे। इस पृथ्वी पर हम गोले की बाहरी सतह पर रहते हैं। इस विचार में कुछ कठिनाइयां हैं। परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए हैं, नहीं तो हम अंतरिक्ष में उड़ जाते। अतः इस पृथ्वी पर हम धरातल पर चलते हैं, परंतु नए यरूशलेम में हम भीतर चलेंगे और फिरेंगे। मेरे प्रियो, आइए आगे देखते हैं उस नगर की दीवार। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा है, उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। मेरे मित्रों, इस नगर की दीवार सुरक्षा के लिए है। दीवारों से घिरा हुआ नगर एक सुरक्षित स्थान होता है। नया यरूशलेम एक सुरक्षित नगर होगा और निवासी पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे। यह स्वर्गीय शांति का नगर, सुरक्षा और शांति के फलों का आनंद लेने का स्थान होगा, जो पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ शांति पाने वालों द्वारा बसा होगा। उस नगर में अनंतकालीन शांति होगी। उसकी दीवारें उसके नाम के पूर्ण अर्थ शांति का प्रतीक होंगी। इन दीवारों की ऊंचाई 216 फुट होगी। हेरोडोटस के अनुसार बेबीलोन के शहरपनाह 75 फुट मोटी तथा 300 फुट ऊंची थी, अर्थात वह नगर अमेध था। नए यरूशलेम की दीवारों की ऊंचाई उस नगर की विशालता के समतुल्य, इसकी रचना में भी सुरक्षा से अधिक उसकी सुंदरता प्रकट है। उसका उद्देश्य यही है। यह दीवार कीमती पत्थर यशब की बनी थी। यह पत्थर अत्यधिक कठोर और अति सुंदर होता है, अतः यह दीवार दृढ़ तो थी ही परंतु सुंदर भी थी। तब आगे देखते हैं नीव में आग के पत्थर। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा हुआ है, उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, दसवीं लहसनीय की, ग्यारहवीं धूम्रकांत की और बारहवीं याकूत की थी। मेरे प्रियो, इस नगर की नींवों पर 12 चेलों के नाम लिखे हैं और वे 12 अलग अलग कीमती पत्थर भी हैं। मनुष्य के लिए सबसे महंगी वस्तु रत्न है। मानवीय समझ के लिए ये पत्थर नगर की भव्यता का वर्णन करते हैं। रत्नों की उत्तमता उन लोगों के लिए नगर की महिमा का वर्णन करती है जिन्हें अभी दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु एक दिन हम साफ साफ देखेंगे। नीव के इन 12 पत्थरों का निकट निरीक्षण सौंदर्य का बहुरंग उदाहरण प्रकट करता है। विभिन्न रंग एवं आभाएं रंगों की नदी सा दिखाई देती है। ये पत्थर हैं। पहला यशब, इसका रंग रंगहीन है और जैसा हम पहले देख चुके हैं कि यह हीरा हो सकता है। यह प्रकाश एवं रंगों का परावर्तन करता है। नए यरूशलेम की चर्चा करते हुए डॉक्टर सीज इसके बारे में कहते हैं, यह धूप में चमकते हुए वर्ण के शुद्ध टुकड़े के समान स्वच्छ, शुद्ध एवं चमकदार होता है। और दूसरा पत्थर है नीलमणि, इसका रंग नीला है और निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय के 10 पद में इसे परमेश्वर की नींव कहा गया है। उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। मोफत इसे नीला पत्थर कहता है, जबकि प्लेनी कहता है कि यह सुनहरी धारी वाला अपारदर्शी पत्थर है। पेत्री प्लेनी से सहमत है। और तीसरी चीज हम देखते हैं, तीसरी बात, लालड़ी। इसका रंग हरा होता है, यह एक प्रकार की मणि है। रॉबर्टसन के अनुसार यह तांबे का यौगिक है। और चौथा है मरकत, यह पूर्ण हरा होता है। रॉबर्टसन इसे हरा पत्थर भी कहता है। और पांचवा है गोमेदक, इसका रंग लाल है परंतु रॉबर्टसन कहता है कि यह लाल धारी का सफेद पत्थर है। छठवां है माणिक्य, इसका रंग आग का सा लाल होता है। और सातवां है पीतमणि, सुनहरे पीले रंग का पत्थर। मोफत के अनुसार यह सुनहरी आभा लिए हुए होता है। आठवां है पेरोज, यह पत्थर मोफत के समान हरा होता है। नौवां है पुखराज, हरी हरी आभा का पीला पत्थर है। रॉबर्टसन इसे सुनहरा हरा पत्थर भी कहता है। और दसवां है लहसनीय, सुनहरा हरा रंग। इंटरनेशनल स्टडी बाइबल इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है कि इसका रंग नीला हरा होता है। और ग्यारहवां है धूम्रकांत, इसका रंग बैंगनी होता है। बारहवां है याकूत, इसका रंग बैंगनी है। मेरे मित्रों, नए यरूशलेम की नींव रत्नों की चमकदार चकाचौंध की है। उसके भीतर प्रभु यीशु बैठा है जो इस पृथ्वी पर जगत की ज्योति था। वहां वह संपूर्ण ब्रह्मांड की ज्योति होगा। अंतरिक्ष यात्रियों का कहना है कि अंतरिक्ष में रंग पूर्णता राखिया और काला है। परंतु नए यरूशलेम को देखने की प्रतीक्षा करें। वह परमेश्वर के नए आकाश और नई पृथ्वी को ऐसा रंगीन बना देगा जैसा कभी कहीं नहीं हुआ है। मेरे विचार में यह एक अत्यधिक आश्चर्यजनक दृश्य होगा। नया यरूशलेम स्वर्ग से निकलकर आने वाला ग्रह होगा। सब कुछ उसका चक्कर काटेगा, वहीं से प्रकाश निकलेगा। वह वास्तव में प्रभु यीशु का ही प्रकाश होगा। वह प्रकार चमकदार सुंदर रंगों से भरपूर होगा। मेरे मित्रों, आज रंगों को प्रकाश का विभाजन कहते हैं, जो मुख्यतः तीन रंगों में है, लाल, नीला और पीला। इन तीन मुख्य रंगों से अन्य सब रंग बनते हैं। रंगों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। अंधकार में रंग दिखाई नहीं देते हैं। कोई वस्तु प्रकाश की किरणों को ग्रहण करती है या परावर्तित करती है, तब रंग दिखाई देते हैं। लाल वस्तु सूर्य किरण के लाल रंग की अपेक्षा सब रंगों को सोख लेती है, तो वह लाल दिखाई देती है, क्योंकि किरण का लाल रंग ही आंखों पर गिरता है। मेरे प्रियो, नया यरूशलेम ज्योति और रंगों का नगर होगा। परमेश्वर ज्योति है और वह वहां होगा। वह नगर हीरा कहा गया है। वहां से तरह तरह के रंग निकलकर परमेश्वर के ब्रह्मांड को ज्योतिर्मय करेंगे। यशब के गोले में यरूशलेम होगा। भीतर से निकलने वाली ज्योति यशब के पार जाएगी और यशब प्रिज्म का कार्य करेगा। वह इंद्रधनुष के सब रंग देगा। कुछ रंग तो ऐसे होंगे जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नया यरूशलेम मेरे विचार में एक यशब के गोले के बना हुआ एक ग्रह होगा। मुख्य रंगों की उपस्थिति से प्रकट होता है कि इस नगर से हर एक रंग एवं आभा उत्पन्न होगी। इंद्रधनुष तो इस ज्योति के नगर के रंगों की एक धूमिल छाया है। ओह, यह नगर कैसी महिमा से पूर्ण होगा। मेरे मित्रों, आइए हम देखें, नगर एवं सड़कें सोने की होंगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 21 पद में लिखा है, 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। आपने ध्यान दिया होगा कि पद 18 में भी लिखा है, नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। आरंभ ही में हमें कहा गया है कि यह नगर पारदर्शी है। इसी से मुझे यह संकेत मिला कि हम उस ग्रह के भीतर रहेंगे। और वह पारदर्शी होगा। इसका अर्थ है कि प्रकाश उसके भीतर से बाहर निकलेगा और इन विभिन्न रंगों के रत्नों से अपरिवर्तित होगा। आज हमारी आंखें जिन रंगों को देखने में असमर्थ हैं, उस समय नई देह की आंखें उन रंगों को देख पाएंगी। यहां यह भी लिखा है कि उसकी सड़कें शुद्ध सोने की हैं। मैं सड़कों की चिंता तो नहीं करता, परंतु दो बातें मुझे प्रभावित करती हैं। पहला, सड़क उस नगर की एक ही सड़क है। दूसरा, वह सड़क पारदर्शी है, वह सोना पारदर्शी होगा। इससे मुझे फिर कहने की प्रेरणा मिलती है कि हम उस गोले के भीतर रहेंगे। वह नगर आज के नगरों जैसा नहीं होगा, जहां सड़कों का ना होना असंभव है। यहां तो यदि एक सड़क हो तो यातायात अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। नए यरूशलेम की एक ही सड़क होगी जो चारों नगरों के द्वारों से आरंभ होगी। वह गोले से आरंभ होकर ऊपर की ओर जाएगी और चक्कर काटकर फिर नीचे आ जाएगी। एक प्रवेश द्वार होता है और दूसरा निकास द्वार होगा। उस सड़क का पारदर्शी होना एक अद्भुत बात होगी। अर्थात इसका अर्थ यही है कि बाहर निकलने वाले प्रकाश में अवरोध उत्पन्न ना हो। मेरे श्रोता मित्रों, क्या आप ऐसे नगर में रहना पसंद करेंगे जो मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का है, और वहां पर वही लोग होंगे जो उसके हैं? आज समय आ गया है कि हम ऐसे नगर की कल्पना करें जो मनुष्य के समझ से परे है। ऐसे नगर को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। मेरे श्रोता मित्रों, आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि आप इन सारी बातों को समझ करके ग्रहण कर सके।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल के मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मरामत वाले। अपना मीत बना ले यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे ये दुनिया है सुनहरी दुनिया से मन फिरा ले। होगा तेरा भला तेरा भला ख्वाबों में जो खोया है। जाग जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है। जाग जरा मत वाले जाग जरा मत वाले जाग जरा